أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ یہ جتنے میرے غلام ہیں یہ میری نافرمانی سے بچ کر مکمل فرما برداری کی برکت سے میرے ولی بن کر آئیں واپس وطن. دنیا پردیس ہے اور آخرت مومن کا وطن ہے. اگر وہیں رہتے عالم ارواح میں تو ایک روح بھی ولی اللہ نہ بنتی، کیونکہ خالی روحانیت ہو اور جسم نہ ہو تو اعمال روحانی کے لیے اور فرما برداری کے لیے جسم کی ضرورت ہے. اگر جسم نہ ہو تو نماز پڑھ سکتی ہے روح خالی؟ اگر سر نہ ہو تو سجدہ ہو سکتا ہے؟ مولانا رومی کی ایک بات یاد آئی، فرمایا کہ اگر کوئی حاجی ایک ٹوپی ہدیہ دے دے تو کئی دفعے شکریہ ادا کرتا ہے، اور بھوک کی حالت میں روٹی کھلا دے تو کہتا ہے بھائی سخت بھوک تھی آپ نے روٹی کھلایا. لیکن حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ٹوپی دینے والوں کا شکریہ ادا کرنے والوں، ٹوپی جہاں رکھتے ہو سر، اگر خدا سر نہ دیتا تو ٹوپی کہاں رکھتے؟ تو جس نے سر عطا فرمایا اس کا بھی تو شکریہ ادا کرو کہ سرکشی نہ کرو. سر کا شکریہ کیا ہے؟ کہ سرکشی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو. ایک معمولی افسر جو تمہیں تنخواہ دیتا ہے ہر وقت سر 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 یہ بات ہے سر یہ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے سر عطا فرمایا وہاں کیوں نہیں سر کہتے کہ سر یہ سر آپ کے لیے خاص وقف ہے؟ سب سے بڑا سر تو وہی ہے جس نے سر بخشا ہے. وہاں بھی کہو کہ سر یہ سر آپ کے لیے وقف ہے. سرکشی تو بڑی چیز ہے، ہم سرکشی کے وسوسوں سے بھی توبہ کریں گے، سرکشی کے خیالات سے بھی معافی مانگیں گے. اگرچہ ضابطے سے وسوسے پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن حق ضابطہ اور ہے اور حق رابطہ اور ہے. اللہ والے وسوسے گناہ سے بھی توبہ کرتے ہیں کہ کیوں ایسا خیال آیا جس میں نفس نے آپ کی نافرمانی کا خیالی پلاؤ کا مزہ چکھا. یہ غیرت ابدیت کے خلاف ہے کہ جس بات سے آپ ناخوش ہوں ہم کیوں اس سے خوشی کا خیال لائیں. خیال بھی اگر آ جائے نافرمانی کا تو اللہ کے عشق کا حق یہی ہے اور اللہ کی محبت کا حق یہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس سے بھی توبہ کرو. دوسری بات فرمائی کہ اگر تم کو دو روٹی بھوک میں کوئی کھلا دے تو تم اس کا بار بار شکریہ ادا کرتے ہو. تو فرمایا کہ جس نے میدہ بنایا ہے، میزبان کی روٹی جہاں رکھتے ہو اس کا نام میدہ ہے، پیٹ ہے، پلیٹ میں سمیٹ پیٹ میں پلیٹ کو سمیٹ اور فلیٹ میں لیٹ. لیکن اس کا بھی شکریہ ادا کرو کہ اللہ آپ نے میدہ دیا، اگر میدہ خراب ہو جائے تو کروڑوں کروڑوں خرچ کیا، امریکہ تک گئے لوگ اور میدہ صحیح نہ ہوا، السر ہوا، پھر کینسر ہوا. फिर नलकी डाली गई और एक तोला आश जौ का पानी की इजाजत मिली, सब पुलाव बिरयानी कीमा का ख्वाब खत्म। मालदारी रही मगर पेट बिरयानी से भी रही। माल से फायदा उठाने के लिए भी तो अल्लाह ताला की रहमत और मदद चाहिए। माल है, मैदे में अल्सर और कैंसर है, बिरयानी के लिए पैसे मौजूद हैं, खा नहीं सकता। तो जितना शुक्रिया अदा करते हो खाना खिलाने वाले का, तो जिसने मैदा दिया, पेट दिया और भूख अता फरमाया, उसका भी तो शुक्रिया अदा करो। अगर भूख ना हो तो क्या करोगे? लाख कोई कहे हजरत शामी कबाब बिरयानी तैयार है, मैदे में भूख नहीं, मैदा खराब हो रहा है, मोशन पर मोशन आ रहे हैं, मोशन पर मोशन, पर मोशन नहीं, फर इस उर्दू में फर्क है, मोशन पर मोशन यानी दस्त पर दस्त लगे हुए हैं। वरना आप कहेंगे तो ये मोशन तो बहुत अच्छा है जिसके बाद परमोशन मिल जाए। मोशन पर मोशन का मतलब यहाँ है कि दस्त पर दस्त लगे हुए, भूख खत्म है, तय हो रही है, मलेरिया चढ़ा है, बुखार, खाना खा सकते हो। इसलिए एक बुजुर्ग शायर ने फरमाया कि सारा आलम दर्द से भरा हुआ है, दुनिया में सुकून नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की याद के। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने तुम्हारे सीने में दिल रखा है, तुम्हारे दिल की लज्जत और हलावत और मिठास और दिल का चैन मेरी याद में है। लेकिन मेरी याद की दो किस्में हैं, मुझको खुश रखना भी याद है और मेरी नाराजगी से बचना भी मेरी याद है। ये नहीं कि नमाज पढ़ लिया, सड़कों पर टेढ़ियों को देखते रहो, जहां हराम नजर है वहां भी करते रहो, झूठ बोलते रहो। जितना फरमाबरदारी हम पर फर्ज है, उतने ही नाफरमानी से बचना भी फर्ज है। जितना अल्लाह को खुश रखना फर्ज है, इतने ही उनको नाखुश न रखना ये भी फर्ज है। ये मोहब्बत का हक है या नहीं बताओ? तो जो लोग अल्लाह की नाखुशी में मजा तलाश करते हैं, इनसे बढ़कर कोई गधा हो सकता है? जब कुरान पाक की आयत का ये ऐलान है कि मेरी ही याद से दिल को चैन मिलता है, तो क्यों नहीं अल्लाह ही की याद में चैन तलाश करते? जब नफ्स में गुनाहों के तकाजे आए तो अल्लाह की मुसल्ला बिछाओ और दो रकात पढ़ो और तस्बीह लेकर अल्लाह का नाम लेना शुरू करो। या अल्लाह के नाम लेने वालों की सोहबत में चले जाओ। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इमाम रब्बानी अपनी मक्तूबात में कि अगर गुनाहों के पहाड़ भी हों, अंधेरे छाए हैं, मंडला रहे हैं, गुनाहों के वसवसों के पहाड़ भी हों, तो किसी अल्लाह वाले के पास चले जाओ। जब उजाला दिल में आएगा उनकी सोहबत की बरकत से, तो दिल काला करने वाले अमाल से नफरत शुरू हो जाएगी। उनकी सोहबत की बरकत से वो इमाम रब्बानी ने लिखा मक्तूबात में अपने कि बड़े बड़े गुनाहों के पहाड़ उड़ जाते हैं। अल्लाह ने निस्बत में अल्लाह ने यह ताकत रखी। उनके पास बैठ कर तो देखो, ये वो लोग हैं कि जिनकी पैबंद से वली साजी होती है, औलिया अल्लाह बनते हैं। पर एक शर्त है इसमें। कोई कहे कि साहब हम तो इतने दिन से आते जाते हैं, यूरीदून वजह नहीं है, ये यूरीदून लैला है, यूरीदून मौला नहीं है। इसके कल्ब में लैलाओं को तर्क करने की कुव्वत इरादिया नहीं है। बेतमाम यहा व बेतमाल यहा, पूरी इरादा कर लो जिस दिन कि हमको नाराज नहीं करना है, अपने मालिक को जान दे देना है। अगर हजरत साहबा के 70 शहीद एक ही दिन में दामने वहद में जान दे दी मैंने उनके नाम पर, इश्क ने सोचा न कुछ अंजाम पर। साहबा ने अंजाम नहीं सोचा कि क्या होगा, इतना अल्लाह पर एतमाद था कि जिसने जान दी है उस पर जान देने में करोड़ा जान अल्लाह अता करेगा। अख्तर ही का शेर है ये, जान दे दी मैंने उनके नाम पर, इश्क ने सोचा न कुछ अंजाम पर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग मेरी याद छोड़कर, देखिए याद से एक तो है गफलत, लेकिन गुनाह भी नहीं कर रहा है, अपना ऐसे ही सो रहा है या चुपचाप बैठा अपना, इसका नाम क्या है? नाफरमानी नहीं है, इसका नाम गफलत है। ये जिक्र का से एराज है मगर बहुत अदना दर्जे का है। एक वो शख्स है जो नाफरमानी में मुब्तला है और गुनाहों के ख्यालात साबिका में भी गर्क है। सनाडीस ने गुजरने का शौक मुझसे बेचैन किए हुए। अब कहेंगे आप सनाडीस कौन सा मुल्क है? अरे भाई संडास सुना है? संडास लेटरिन हिंदुस्तान में हम लोग संडास कहते थे। संडास की जमा पूछ लो। पांच हरफी जो हरूफ होते हैं उनका जमा मफाइल के वजन पर आता है। जैसे उस फूर में पांच हरफ हैं तो असाफिर उसका वजन आएगा। मिनकार पांच हरफी है तो मनाकिर उसका वजन आएगा। संडास सीन नून डाल अलिफ सीन पांच हरफ है, सनाडीस इसकी जमा आएगी। तो जो इंसान वली अल्लाह होता है वो मौलाए पाक में मस्त रहता है क्योंकि दिल उसका पाक है। और जो गंदे ख्यालात और नफ्स की गुलामी में रहता है वो सनाडीस के अंदर गुजरने और मुरूर के लिए सुरूर तलाश करता है। उसका दिल नापाक है। जब नापाक ख्यालात आएंगे तो जब जर्फ में कोई बर्तन में आप मुश्क और गूद का इतर हटाकर पैखाना रखेंगे तो वो बर्तन नापाक हो गया नहीं? तो जिस बर्तन दिल के जिसके दिल के बर्तन में गंदे गंदे ख्यालात गुनाहों के पकाए जाते हैं उसका दिल पाक होगा? तो पाक नापाक दिल में मौला है पाक आएगा। इसी यही मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह का कि गैरुल्लाह से कल्ब को पाक कर लो, सारा आलम इल्लल्लाह की तजल्लियात ही तजल्लियात नजर आएगा। जर्रे जर्रे में जलवे अल्लाह के हैं। हर जर्रा आलम का जुज है और आलम माने निशान। आलम आलम से है, आलम आलम से है, आलम माने निशानी। अल्लाह के हर जर्रे दुनिया के कायनात के अल्लाह की दलील पेश करते हैं। और जो अल्लाह दोनों जहान में लज्जत पैदा करता है जब मौला दिल में आता है तो उसके दिल की लज्जत दोनों जहान की लज्जत से आला होती है क्योंकि दोनों जहान की लज्जत मखलूक है और इसके कल्ब में खुद खालिके लज्जाते कायनात मौजूद है। तो इसके कल्ब की लज्जत के आलम का क्या आलम होगा? दुनिया में किसी को इस आलम का अंदाजा भी नहीं है। वरना सलातीन अपने ताज औलिया अल्लाह के पाँव में रख देते ये दौलत हमें भी दे दो। सारे दुनिया के सलातीन और मजानीन आलम और लैलाए कायनात और कायनात रोमांटिक और गर्क दर बहरे अटलांटिक ये सब के सब औलिया अल्लाह के कदमों में अपने कायनात सल्तनत रखते सलातीन और मजानीन आलम और लैलाए कायनात अपनी रोमांटिक कायनात रख देते आप अल्लाह वालों के कदमों में कि जो लज्जत आपके दिल में है वो हमें चाहिए। हमारी लैलाएं तो बुढ़ी हो गई। किसी को मुंह टेढ़ा हो रहा है, लकवा गिरा हुआ है, किसी के गुर्दे में बेकार हो रहे हैं। हम ऐसे मौला को चाहते हैं जिनके कोई आजा से पाक है और कभी कोई बीमारी नहीं होती और कभी कोई आयब नहीं लगता। वो क्या है? कुद्दूस भी है और सलाम भी है। देख लो तफसीर बयानुल कुरान में कुद्दूस भी है सलाम भी है। अल्लाह के दोनों नाम कुद्दूस जिसके माजी में कभी आयब न लगा हो, सलाम जिसके मुस्तकबिल में अंदेशे ऐब न हो। ये तफसीर बयान कुरान पेश कर रहा हूँ। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बरस अपनी सारी दुनिया की लैलाओं को देख लो जिनका माजी पैदाइश से पहले माँ के पेट में बाप का नुतफा था और माँ का हैज था। बोलो माजी ऐबदार था या नहीं? इनकी मटीरियल अजजाए तखलीकिया अजजाए तरकीबिया अजजाए तामीरिया। माँ का हैज 9 महीना बंद रहता उसी से बनते हैं नाक कान आजाए बच्चे के और बाप का नुतफा। दोनों नापाक है यानी तो माजी ऐबदार और जो हाल है मौजूदा सुबह शाम लेटरिन में और जाजरू में एक्सपोर्ट ऑफिस में पैखाना निकलता है यानी बदबूदार चीजें। वहां आर्मी फरमाते हैं कि बिरयानी खाते हो खुशबूदार इंपोर्ट तुम्हारा कितना प्यारा है अल्लाह की तरफ से मगर तुम्हारे पेट में जाकर वही सुबह एक्सपोर्ट कितना बदबूदार करते हो। अपनी हैसियत को पहचानो कि तुम्हारे पेट में खुशबू भी जाकर बदबू से ट्रांसफर होती है। یہ تمہاری حقیقت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اطمینان قلب کا جو راستہ بتایا اس کو چھوڑ کر گناہوں میں لذت تلاش کرنا والا بیوقوف نہیں ہے, مہا بیوقوف ہے. اس پر ایک لطیفہ یاد آیا. ملاوی کی ایک سڑک جا رہی تھی, ہم اور مولانا عبدالحمید صاحب گزر رہے تھے جو آزاد ویل دارالعلوم کے پرنسپل اور محتمی میں, وہاں بورڈ لگا تھا جگہ جگہ ایس لکھا تھا ایس, پھر ایک سرخ روشنائی سے اس کو کراس کر دیا, کاٹ دیا, ایس لکھ کر ایس لکھا انگریزی میں, پھر اس کو لال لکیر مار دی. تو میں نے مولانا سے پوچھا کہ یہ ایس پر لکیر لال کیوں لگا دی؟ کہا کہ یہاں معنی یہ ہے کہ یہاں موٹر چلانے والے بے وقوف ہو کر گزر جائیں, وقوف نہ کریں, بے وقوف ہو جائیں, ٹھہرنا منع ہے. مطلب یہاں یہاں ٹھہرنا منع ہے, اور عربی میں وقوف معنی ٹھہرنا. اس لیے جدہ میں جگہ جگہ لکھا رہتا ہے کہ یہاں ممنوع الوقوف, یہاں موٹر کوئی نہ روکے. تو انہوں نے ہنس ہنس کر کے کہا, یہ لطیفہ عجیب و غریب, کہ یہاں موٹر چلانے والے سب بے وقوف ہو جائیں, یعنی وقوف نہ کریں, ٹھہرے نہیں, گزر جائیں. تو یہاں بے وقوف کا استعمال کتنا شاندار کیا. ان کی آواز کیشک میں, افریقہ میں بھی سنی جا رہی ہے, برطانیہ میں بھی, کیونکہ یہ آواز ایسی ہے کیشک جو کرنے والے ہیں اس میں آ جاتی. سب سمجھتے ہیں کوئی کراچی میں پاگل بھی ہے. تو دوستو, درد دل سے کہتا ہوں کہ مزیدار زندگی, اطمینان قلب کی زندگی, سکون قلب کی زندگی, چین کی زندگی, راحت قلب و جا کی زندگی, بغیر سوچے ہوئے جان دے دو اللہ پر, اپنی خوشیاں اللہ پر فدا کر دو, حرام خوشیوں سے دل کو خوش مت کرو, اور عاقبت کو بھی بھول جاؤ, انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اہل تقویٰ کے ہاتھ میں ہے. والعاقبت للمتقین, عاقبت اور انجام اہل تقویٰ کے ہاتھ میں ہے, یعنی میرے, میں نے اپنے اولیاء اور دوستوں کے ہاتھ میں ان کا انجام رکھ دیا. کی تقویٰ کی برکت سے جب میرے دوست کا میرے دوست بن جاؤ گے تو پھر کون ہے ظالم جو میرے دوستوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دنیا میں بھی چین, آخرت میں بھی چین. اگر بظاہر دشمن بھی ہوں گے تو دل میں بے سکونی انشاءاللہ نہیں آئے گی, دل میں تکلیف نہیں نافذ ہوگی, نفوذ نہیں کرے گی. غم پروف کر دیتا ہے دل, اور اس کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے دلائل عطا کرتے ہیں. کذالک جعلنا لکل نبینا دعا, ہم نے ہر نبی کو دشمن دیے, لہذا دشمن کا ہونا یہ نبیوں کے لیے نعمت بتایا اللہ نے, کہ ہم نے نبیوں کے لیے دشمن بنایا, کیونکہ وہ یہ عقاب ہیں, جس کو تیز اڑانا ہوتا ہے تو ہوا مخالف چلتی ہے, جب عقاب کو تیز چلانا ہوتا ہے تو ہوا مخالف ہوتی ہے, اور جب جہاز تیز چلتا ہے تو سمجھ لو ہوا مخالف ہے. جب ہوا مخالف ہوگی تو پائلٹ جہاز کے رفتار کو تیز کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کی روح کے جہاز کو اپنے قرب کے منازل طے کرنے کے لیے تیز کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے دشمن پیدا کرتے ہیں, تو پھر وہ اللہ کی طرف زیادہ رجوع ہوتا ہے اور اس قبلے سے محفوظ رہتا ہے. اسی ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے میرے دو سوال کا جواب عطا فرمایا. دل میں ایک سوال ہوتا تھا کہ جب تیر جوان ہوتا ہے تو اس کے مرید بہت تھوڑے ہوتے ہیں, اور جیسے جیسے کمزور ہوتا جاتا ہے اس کے مرید ساری دنیا میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسی میں میں بھی شامل ہوں کہ جب میں جوان تھا ناظم آباد میں تو 20-25 مرید مشکل سے تھے. اب جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے 70 سے اوپر, تو سارے عالم میں بلاوا آ رہا ہے اور مریدین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جوانی ہی میں اگر یہ مجمع اور خوب سارے عالم میں بلاوا آ جاتا تو جوانی میں ہم زیادہ دین پر فدا رہتے. اب طاقت ہی نہیں ہے, جان جب مانگا کہ جب جان کمزور ہو گئی, تکلی جان کیوں نہیں اللہ نے مانگا, اسی وقت رجوع بڑھ جائے. ہر دین کے خادموں کو جوانی ہی میں زبردست اجتماع اور زبردست مریدوں کی تعداد نصیب ہو جائے. اس کا جواب سنیے کیا آتا ہوا. میرا ہی دل میں خیال آتا تھا لیکن میں نے جواب کی فکر بھی نہیں کی تھی کہ اللہ کی مرضی ہے, جس طرح چاہے پالیں وہ, کسی میں خیر ہے. لیکن تفصیلی جواب نہیں آتا تھا. لہذا اس ہفتے میں سندھ بلو سوسائٹی والی خانقاہ میں اچانک قلب میں اللہ نے اس کا دو جواب عطا فرمایا. نمبر ایک کہ جوانی میں مجمع اور مریدوں کی تعداد کیوں نہیں بڑھتی, کہ اس وقت میں طاقت زیادہ ہوتی ہے جوانی میں اور آہوزاری کم ہوتی ہے, کمزوری کا احساس نہیں ہوتا. اس وقت اگر مجمع مریدوں کا زیادہ ہو جائے تو اپنی بڑائی دل میں آنے کا قوی اندیشہ ہے, کیونکہ سارے عالم سے واہ واہ کی آواز آتی اور کمزوری نہ ہونے سے آہ نہ نکلتی. اب کمزوری میں اللہ تعالیٰ بہا دیتے ہیں اس کا کام کہ ساری دنیا سے واہ واہ آتی ہے کہ واہ واہ کیسے عمدہ تقریر, کیسے لے یہ وہ چنی و چنا, قزا و قزا, سوئنسو. لیکن کمزوری کی آہ سے وہ سب دنیا بھر کی تعریفوں سے اور واہ واہ سے اس کو اینٹی بایوٹک ملتی رہتی ہے. یہ آہ جو ہے سب ساری واہ کو تباہ کر دیتی ہے, واہ کے اثرات کو تباہ کر دیتی ہے, اور عجب و کبر کا سرا بھی نہیں آنے دیتا اللہ. اور اپنے بندوں کی غلامی کے زاویے قائمہ کے 90 ڈگری کو قائم رکھتا ہے, بندگی رہتی ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں ساری دنیا کے بادشاہ اگر میرے مرید ہو جائیں مسلمان ہو کر تو اشرف علی کا زاویہ قائمہ بندگی کا ایک اشاریہ آگے پیچھے نہیں ہوگا, میں ویسے اللہ کا بندہ اور آہ وزاری رکھوں گا. زور بازو نہیں آئے گا, زور سے اللہ نہیں ملتا, زاری سے ملتا ہے. زور سے اللہ نہیں ملتا, زاری سے ملتا ہے. ورنہ رستم و بھولو اور جتنے دنیا میں پہلوان ہیں سب ولی اللہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آہ وزاری سے ملتا ہے, اشک باری سے ملتا ہے, بے قراری سے ملتا ہے, استغفار و توبہ سے ملتا ہے, اشک ندامت سے اس کے ماضی بھی دھل جاتا ہے, حال بھی اللہ درست کرتا ہے اور مستقبل کی کفالت قبول کرتا ہے. جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کا ماضی حال مستقبل تینوں زمانہ بنا دیتا ہے. اللہ جس بندے سے خوش ہو اس کی زندگی کا کوئی شعبہ تشنا اور حسرت زدہ نہیں رکھتا, اور تباہ تو کرنا درکنار, تباہ ہونا تو درکنار, تباہ کے دہانے اور کنارے پر بھی نہیں جانے دیتا اس کو. اللہ تعالیٰ اس کے تینوں زمانوں کو بنا دیتے ہیں, ماضی کو معاف کر دیتے ہیں, حال کو درست فرما دیتے ہیں, اور مستقبل کو تقوی کے نور سے روشن رکھنے کی کفالت و ضمانت قبول کرتے ہیں. یہ اللہ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس کو تینوں انعام دیتے ہیں. اب ایک سوال کا حل ہو گیا نا کہ جوانی میں طاقت کی وجہ سے آہ نہیں ہوتی, اٹھتے بیٹھتے تگڑا ایک دم سوٹ جاتا ہے, اور بڑھاپی میں اٹھتا بھی ہے تو آہ کیسے سنبھالتا ہے, مختلف گیئر بدل کے وہ کھڑا ہوتا ہے. میں اپنے کو دیکھتا ہوں کہ میں جوانی میں پتلا دبلا ایسے اٹھ جاتا تھا سکنڈوں میں, اب مختلف گیئر, آگے ہاتھ رکھتا ہوں, پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا ہوں, پھر کس طرح سے شاید کوئی گیئر خالی نہ رہتا ہوں. تو اس آہ سے مخلوق کی واہ کے سر سے بچ گیا وہ. اب رہ گیا کہ جوانی میں کام زیادہ ہوتا ہے دین کا, بڑھاپی میں کام اس کے لحاظ سے جو 2 گھنٹہ تقریر کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں پھر آدھے گھنٹے میں تھک جاتا ہے, یہ کام تو کم ہو گیا. پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب عطا فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بڈھا ہوگا میرا بندہ دین کا خادم تو پرانی شراب جو ہوتی ہے تو اس میں نشہ پڑ جاتا ہے. نئی شراب کی ایک بوتل 20 بوتل, نئی شراب کی 20 بوتل پرانی شراب کی ایک بوتل سے بھی کم ہوتی ہے. تو مرارونی فرماتے ہیں یہ تو دنیاوی شراب کا حال ہے جو حرام ہے, ناپاک ہے, ناپاک لوگ پیتے ہیں, جس کے پینے کے بعد فوراً پیشاب کرنے کا تقاضا ہوتا ہے. یہی دلیل ہے کہ جو شراب آبشر ہے, شراب کیا ہے؟ آبشر, شر کا پانی ہے جس سے تمہارا موت نکال دیتا ہے, فوراً بھاگتے ہو پیشاب. جو بھی شرابی ہیں ان کو دیکھ لو, شراب پینے کے بعد فوراً ان کو موتنا پڑتا ہے. और फिर अक्ल रुचि नेमत से महरूम कर दी जाते हैं, फिर माँ बहन की गालियां बकते हुए चलते हैं और पैर की लड़खड़ाहट बताती है, लेकिन इनके मुंह से ऑलफोल निकलता है। बर्तानिया में एक शहर है, उसका नाम ही ऑलसोल है। तो मैंने कहा यार ये तो ऑलफोल के वजन पर है। तो मौलाना अयूब सूरती वहां के लिस्टर के हैं, बहुत हंसे, वाकई वजन तो ही मिलता है। लेकिन खैर वजन से कुछ नहीं होता अगर अल्लाह का अमल सही हो तो। लेकिन जो अल्लाह वाले आसमान की पीते हैं, जिस पर अख्तर का उर्दू शेर है, मेरे पीने को दोस्तों सुन लो आसमानों से मैं उतरती हूँ, वो ताके हरम से आती है। एक शायर ने कहा था रियाज सहराबादी ने, गोरखपुर के रईस सुभानअल्लाह खान ने 1000 अशरफी इनाम दी थी उस शायर को, रियाज सहराबादी को, इस शेर पर जो अब सुना रहा हूँ। ताके हरम से शेख वो बोतल उठा तोला, ताके हरम से शेख वो बोतल उठा तोला, यानी जिसको तू छुपा के तहज्जुद के वक्त पीता है, आधी रात में अल्लाह का नाम लेता है। ताके हरम से शेख वो बोतल उठा तोला, उतनी जो आसमान से थी कल उठा तोला। एक हजार अशरफी नाम। तो अल्लाह ताला ने ये दूसरा जवाब अता फरमाया कि अगर से बुढ़ा हो जाए मेरा खादिम दीन और कमजोर भी हो जाए और मकदार इबादत मकदार खिदमत कम हो जाए, लेकिन मैं नशा ज्यादा तेज कर दूंगा उसको। खासा कमरे की बाशद में लदुन, जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि जब दुनियावी शराब पुरानी होकर नशा तेज होता है तो जो आसमान से अल्लाह वालों को अल्लाह पिलाता है उसका नशा खासा आँख हमरे, खासा आँख हमरे, खास करके वो शराब खासा आँख हमरे की बाशद मिल लदुन जो अल्लाह ताला से उतरेगी और अल्लाह वालों को पिलाई जाएगी आसमान वाली, जिससे अनवार पैदा होते हैं। शाहों के सरों में ताजे गरा से दर्द सा अक्सर रहता है और अहले सफा के सीनों, अहले वफा कहता हूँ, अहले वफा वल्लाह कहता हूँ, जो जालिम बदनजरी करके हसीन नमक हराम चखता है ये बावफा नहीं है। इसने अल्लाह की दी हुई रोशनी को अल्लाह की वफादारी में इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह के साथ बेवफाई में अपने नफ्स से फरार है और खालिक नफ्स से बेवफा है। ये अपने नफ्स के साथ वफादार है, दुश्मन का वफादार है। और जिसने कहा कि मैं तुम्हारा वली हूँ, अल्लाह वली लजीन आमनू, मोमिन को वली फरमाया अल्लाह ने, ये उनका कर्म है, ये उनका कर्म है कि नुत्फे नापाक और माँ के हैज से पैदा करके अपना दोस्त करार दे दे और कुरान में वही नाजिल कर दे, कयामत तक के लिए डंका बजा दे कि तुम हमारे सब मोमिन हमारे वली हैं, दोस्त हैं। इतना बड़ा मौला है हमारी मटेरियल से वाकिफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तुम माओ के पेट में बनते हो, हैज़ और माँ बाप की मनी आलूदा गंदगी आलूद होते रहते हो है, लेकिन वो फिटिंग उससे भी हम बाखबर हैं कि हम ही तो पैदा करते हैं, हम तुम्हारे मुसव्विर हैं, हम ही तुम्हारी तस्वीर बनाते हैं माँ के पेट में। वो लजी उसम फिलहाल माओ के पेट में हम ही तो तुम्हारी तस्वीर और रफू और नक्शागरी और नक्शा साजी करते हैं। लेकिन तुम माओ के पेट में जिस हालत में रहते हो हम उससे बाखबर हैं। वो आलम बेकुम इदनशाकुम, जब तुम्हें पैदा करता है अल्लाह ताला तुमसे बाखबर है। वान तुम फी बुतूने उम्महातिकुम, और तुम अपनी माओ के पेट में जिस हालत में रहते हो बनते हुए हम उससे भी बाखबर। फला तो जक्कू अनफुसकुम, तो अपने को मुकद्दस बुजुर्ग मत समझो। तज़किया नफ्स तो फर्ज है मगर अपने को मुज़क्का समझना हराम है। तज़किया नफ्स इस्लाह नफ्स तो फर्ज है कि नफ्स को गंदी आदतों से पाक करो, ये तो फर्ज है, लेकिन अपने को पाक व साफ समझना ये हराम है। फला तो जक्कू अनफुसकुम, यहाँ तज़किया नस्बत इलल माख़ज़ है, यानी तुम पाकी की नस्बत अपनी तरफ मत करना, क्योंकि तुम माँ के पेट का होता है अल्लाह की नजर में बुरा होता है, जो बंदा अपनी नजर में बुरा होता है अल्लाह की नजर में भला होता है। यह हक़ उम्मत का जुमला है। तो अल्लाह सुबहानहू ताला ने इस आयत में, इसी आयत पर कस अक्सर आपने सुना होगा मगर हर बयान मेरा बदल जाता है, यानी आयत वही होती है, नए जाम मीना अदा हो रहे हैं, शराब वही है आसमान वाली मगर जाम मीना अल्लाह बदलता रहता है ताकि मेरे बंदे सुनने वाले घबरा न जाएं। अरे तो वही एक ही बात है, एक ही बात, प्याले बदल जाते हैं। आप बताओ, चाय कोई पिलाए, कभी चाइना की, कभी जापान की प्यालियां, कभी खूबसूरत नई नई डिजाइन में, तो मजा बढ़ जाता है। अल्लाह ताला भी अपने बंदों को उलूम अता फरमाते हैं, जाम मीना नए नए बदलते रहते हैं। तो मजमून बदल गया कि नहीं आज? अल्लाह ही की याद से तुमको चैन मिलेगा। तुम कहाँ चैन तलाश करते हो मुर्दा लाशों के साथ? अब इसके बाद ये ईमान एतकादी आपको जो यकीन हासिल हो रहा है इस वक्त कि अल्लाह ही की याद से चैन हासिल होता है, ये एतकादी ईमान है। लेकिन एतकादी ईमान जो है और मौरूसी ईमान और इस्तिदलाली ईमान और अकली ईमान, ये अमल के लिए काफी नहीं है। ईमान एतकादिया, अकलिया, मौरूसिया, इस्तिदलालिया, ये अमल के लिए काफी नहीं है। अमल के लिए किस ईमान की जरूरत है? ईमान ज़ौकिया, विजदानिया, हालिया चाहिए कि कल्ब के अंदर अल्लाह ताला का तजल्लियात से दिल भरा हो, तो दिल पर तजल्लियात इलाहिया का नुजूल हो रहा हो, तो नुजूल तजल्लियात इलाहिया के साथ गुनाह की तरफ वो जा नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं हो सकती। चमगादड़ आफताब के सामने आ सकता है? चमगादड़ की खसलत जुल्मत अंधेरा तलाश करता है। चमगादड़ जिसको बादुर कहते हैं अहले बंगाल, मैं वहां की इस्तलाह भी बता देता हूं, बहादुर बहादुर नहीं होता, रोशनी में नहीं आ सकता। तो हर अल्लाह के जिक्र में हर वक्त डूबे रहो, कल्बन जन्नन ख्यालन जिक्रन, जिक्र लिसानी भी मिसा, आंख मत बंद किया करो, आंखों से तुमने पी नहीं, आंखों की तुमने पी नहीं, मैं कशो ये तो मैं कशी, रिंदी है मैं कशी नहीं, आंखों से तुमने पी नहीं, आंखों की तुमने पी नहीं, मैं कशो ये तो मैं कशी, रिंदी है मैं कशी नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह सुभानहु ताला जिसके कल्ब पर अपने तजल्लियात मुतवातिरा वाफिरा बाज़गा अता करते हैं, फिर चमगादड़ की तरह जुल्मात को तलाश भी नहीं करता, जुल्मत पसंदी का जोक खत्म हो जाता है, अंधेरों से उसको मुनासिबत नहीं रहती। वो हर वक्त चाहता है कि अल्लाह को इस दर्द दिल से याद करूं, कि हर वक्त तजल्लियात में रहूं, रोशनी में रहूं। लेकिन कुव्वत इरादिया, मैंने अर्ज किया था ना, जब ईमान पैदा हो जाए दिल में, ज़ौकिया हालिया विजदानिया, तो ऐसा ईमान औलिया सिद्दीकीन का होता है, फिर अल्लाह ताला कल्ब में कुव्वत इरादिया जान देने की पैदा करते हैं कि जान दे देंगे मगर मालिक को नाराज नहीं करेंगे, हराम खुशियों से, हराम नमक चखने की आदत से बेजार हो जाएगा वो, अल्लाह के लिए तो बेकरार रहेगा मगर गैरुल्लाह से बेजार रहेगा। अल्लाह के लिए वही बेकरार रहता है जो गैरुल्लाह से बेजार रहता है। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर है कि तुम बस गैरुल्लाह निकालते रहो, ला के मेरी तलवार याद कर लो, जब गैरुल्लाह नजर आए और दिल में तकाजा हो ये ला इलाहा की कैंची से काट दो। जैसे पान खाने वाले और पान बेचने वाले जब पान सड़ता है तो सड़े हुए पान को कैंची से जल्दी काटते हैं। मैंने एक पान बेचने वाले से पूछा कि इतनी जल्दी क्या फिक्र क्या है, क्योंकि अगर जल्दी नहीं काटूंगा तो पान का अगला तंदुरुस्त भी जो हिस्सा है वो भी सड़ जाएगा। तो जब दिल में सड़े हुए लाशें आने लगे तो जल्दी से ला इलाहा के जरिए उसको काट दो, वरना पूरा दिल सड़ जाएगा। और दिल की शक्ल भी पान की तरह है। अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने हमें कैंची दे दी है? और दुनियावी पान तो कट जाता है मगर फिर वो आगे नहीं बढ़ता, छोटा होता चला जाता है। दिल ऐसा पान अल्लाह ने अता फरमाया कि मारूमी फरमाते हैं कि जब मेरे चिराग की रोशनी पर गुल आ जाता है, काला काली बत्ती काली हो जाती है, तो कैंची से काटने से रोशनी बढ़ जाती है। हमारा दिल और ईमान गैरुल्लाह से बचने में जो गम और कैंची लगती है उससे रोशनी और बढ़ जाती है। अगर हजारा बार तू गर्दन जमी, ऐ दुनिया वालों, अगर ईमान वालों की तुम हजारों बार गर्दन काटोगे, हम तो समय पर फरोजम रोशनी, तो चिराग की तरह हमारी रोशनी ईमान की बढ़ती रहेगी। ईमान कमजोर नहीं होगा तुम्हारी तलवार, तुम्हारे इन हरबों से। नफ्स शैतान को भी यही जवाब दे दो कि तुम कितने ही गुल पैदा करो, हमारे चिराग की, ईमान की चिराग की बत्ती में ऐ नफ्स शैतान खबीस अमाल के तकाजों से कितने ही गुल पैदा कर दे, लेकिन हम ला इलाहा की कैंची से काटते रहेंगे। और हम तो समय पर फरोजम रोशनी, उस चिराग की रोशनी बढ़ जाती या नहीं? लालटेन में भी अगर बत्ती में गुल आ जाए तो 300-300 से यूं जलती है, और कैंची से काट दो तो बेहतरीन रोशनी होती है। तो अल्लाह ताला ने हमें नफ्स के तकाजे ईमान की रोशनी बहाने के लिए दिए हैं, हमें बर्बाद करना नहीं था। इनके दिल में गुनाहों के तकाजे पैदा करके इनको बर्बाद कर दो। अब्बा अपने औलाद को बर्बाद करेगा तो रब्बा अपने बंदों को बर्बाद कर नहीं करता। हमारी ईमान की रोशनी बहाने के लिए हमारे दिलों में तकाजाए मासियत रखे हैं। बस सिर्फ ये है कि कुव्वत ईमानिया हमारे कल्ब में ज़ौकिया हालिया विजदानिया आता हो, ताकि कुव्वत इरादिया बढ़ जाए कि हम उस गुल को काट दें। यानी बत्ती में जो काला काला सा जब धुआं देने लगे, चिराग धुआं देने लगे, तो चिराग जब धुआं देने लगे तो समझ लो गुल आ गया। लालटेन से धुआं निकलने लगे तो समझ लो गुल आ गया। जब गुल आ जाए तो फौरन कैंची से उसे काट दो, रोशनी बढ़ जाएगी। और जिसने देर की, आहिस्ता आहिस्ता उसका चिराग ही खत्म हो गया। जिसने गुनाह छोड़ने में ताखीर की, उसकी अल्लाह की दोस्ती का चिराग हमेशा के लिए गुल हो गया। बाज़ लोग हमेशा के लिए महरूम हो गए, मंजिले मनाजिले सुलूक उनके तय ही नहीं हुए, नाकाम रहे। लेकिन मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह के नाम पर जान दे दो, ये ना सोचो कि जान चली जाएगी। मारूमी फरमाते हैं कि नीम जा बिस्तान दो सच जान देहद, अल्लाह आधी जान लेगा लेकिन 100 जान अता करेगा। अगर गुनाह छोड़ने में, नजर बचाने में, किसी गुनाह के छोड़ने में कुछ गम आए तो फिक्र न करो, नीम जा आधी जान लेगा अल्लाह, आधी जान, नीम जा विस्तानत, लेकिन क्या देगा, सच जा देहद, सैकड़ों जान अता करेगा। उनसे दर वहमत ना आए दा देहद, वो लज्जत वो चैन वो इत्मीनान देगा कि जिसको तुम वहम गुमान में भी नहीं ला सकते, न किसी लुगत में पा सकते हो, क्योंकि लुगत मखलूक है और महदूद है। ये लज्जत कुर्ब इलाहिया है, ये गैर महदूद है। गैर महदूद की तादीर महदूद लुगत नहीं कर सकती। दिल ही दिल में मस्त रहता है अल्लाह वाला, इसीलिए सारे आलम से बेनियाज रहता है। आजा साहब फरमाते हैं, रहते हैं हम जहां में यूं जैसे यहां कोई नहीं, रहते हैं हम जहां में यूं जैसे यहां कोई नहीं, यानी हम हैं और हमारा अल्लाह है। क्या जिंदगी है, सुभान अल्लाह। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह है तुतमैनुल क़ुलूब, जालिम है वो जालिम जो अल्लाह को छोड़कर नाफरमानी के रास्ते से हराम खुशियों की तलाश में है, तमन्ना में है, पागल है, अक्ल से महरूम है। कुरान पर ईमान लाता है मगर ईमान इसका एतकादी है। अल्लाह बेज़िक्रिल्लाह है तत्मैनुल क़ुलूब, खबरदार। मेरे शेख तर्जमा करते थे शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह, अपने कानों की से गफलत की रुई निकालो, अला हर्फ तंबीह फरमाते थे, अला अमाहा, तीन लफ्ज तंबीह के हैं कि नहीं, तो अला फरमाते, अपने कानों से रुई की गफलत निकालो, गौर से सुन लो, तुम चैन मुझको छोड़कर तलाश मत करो। तुमको दुनिया वाले चैन नहीं देंगे, बेचैन करेंगे, गालियां देंगे, और तुम तड़प तड़प के खमीरा चाटते रहोगे, अर्क बेत मिश्क पीते रहोगे, और अफतीमून विलायती दसुरा बस्ता, लेकिन पागल होने से नहीं बच सकोगे जब तक किसी खानकाह से वाबस्ता न हो और सच्ची खानकाह हो, खामुखा न हो और स्याह साहब न हो, वाकई आह साहिब आह हो। खानकाह असली क्या है, अहले दिल के दिल से निकले आह आह, अहले दिल के दिल से निकले आह आह, बस वही अखदर है असली खानकाह। असली खानकाह वही है जिसको अल्लाह ताला की मोहब्बत का दर्द अता हो, और वही फैज याफ्ता है अपने शेख का। जब तक गुनाह छोड़ने के लिए कुव्वत इरादिया न हासिल हो और जान की बाजी लगाने की तौफीक न हो, वो सोहबत याफ्ता तो है, फैज याफ्ता नहीं है। ये फर्क आपको एक नया उन्वान दे रहा हूँ। लोग कहते ना भाई बहुत दिन तक शेख के साथ रहे, सोहबत याफ्ता रहना और है और फैज याफ्ता होना और है। जैसे कोई शख्स बर्फ खाने में है और हर तरफ से ठंडी हवा आ रही है, बोतल भी ठंडी पी रहा है। क्या कहूँ, इस पर एक अपना पुराना शेर याद आ गया, बुतखाना हरिओम से तौबा करे है मीर। हिंदुस्तान में हिंदू कहता हरिओम हरिओम, ये उनके बुत का नाम है। बुतखाना हरिओम से तौबा करे है मीर, बोतल मगर पीता है अभी तक हरी हरी। वो हरी हरी बोतल पाकोला की चली थी, शायद अब भी हो, लेकिन तो उसको मैंने शेर पर ये कहा। और जब मैं अमृतसर से पहुंचा लाहौर के बॉर्डर क्रॉस करके, बहुत पहली पुरानी बात है, तो मेरी टैक्सी में हिंदू चला रहा था, हिंदू की टैक्सी थी। हिंदुस्तान के बॉर्डर से दाखिल हुआ तो फौरन एक हिंदू भी आके बैठ गया, चलाने वाला भी हिंदू, उसका दोस्त भी हिंदू, तो और हम पीछे बैठे हुए। फौरन आते ही उसका हरी 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 हरी, मैंने कहा क्या हरी हरी करता है, वो अपना देवता का नाम ले रहा था। तो दोस्तों, गैरुल्लाह से दूर से अगर असर नजर आ रहा हो कि कोई नमकीन शक्ल आ रही है या नमकीना, और हसीन हो या हसीना, दूर से होशियार, जैसे सांप आते हुए आप डंडा पोजीशन में लेते हो, लेकिन सांप को तो डंडा मार सकते हो, हसीनों को डंडा मत मारना वरना पुलिस पकड़ लेगी। सिर्फ नजर अपने ख्वाहिशात पर डंडे मार दो, अल्लाह की मोहब्बत का डंडा, ईमान का डंडा, तकवा का डंडा, अपनी ख्वाहिशात को हटाकर फुटपाथ को बदल दो। अपने ईमान पर एतमाद मत करो, फुटपाथ बदल दो, थोड़ी सी तकलीफ उठा लो, मगर घबरा कर इस तरह सड़क को मत क्रॉस करो कि तुम्हारा रास खतरे में आ जाए, यानी सर पर बस घोड़ दे एहतियात से, वरना वहां नाबीना बन जाओ थोड़ी देर के लिए, जब तक गुजर न जाए। खड़े हो जाओ, आंख बंद करके खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर चलते रहोगे और आंख बंद रहेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, हो सकता है उसी से एक्सीडेंट हो जाए जिससे आप एहतियात करना चाहते हो। लिहाजा मेरा शेर है, जब आ गए वो सामने नाबीना बन गए, और जब हट गए वो सामने से बीना बन गए। ये बाजी खवातीन ने मुझे फोन किया कि आप तो ऐसी नफरत दिलाते हो, कहीं मेरा शौहर मुझसे नफरत न करने लगे। मैंने कहा कि ये बात नहीं है, मैं बाजारी औरतों से बचाता हूँ, और अपनी बीवी पर फिदा होना इबादत समझाता हूँ, कि जितना चाहो अपनी बीवी से इबादत, उसकी इबादत में अगर बीवी का तसव्वुर भी आ जाए तो भी मुजर नहीं है। हकीम उम्मत को एक शख्स ने खत लिखा कि जब मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ, तस्बीह पढ़ता हूँ, तो बीवी का ख्याल आ जाता है। फरमाया ये ख्याल मुजर नहीं है, ये गैरुल्लाह नहीं है, इनकी हुकूक के अदा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। आशिरहुन्न बिलमारूफ, मेरे जल्द आने की वजह यही थी, जबकि मेरे बेटे मौलाना नजर मियां ने कहा कि अब्बा आप और रह लें, और मेरी और अम्मा भी यही कह रही हैं, यानी बीवी ने भी इजाजत दी। उस वक्त मेरा दो जुमला याद कर लो कि इजाजत और जाब्ता और है, और रहमत और राबिता और है। मेरे दिल में रहम आया कि मैं अपनी बीवा उम्रा पेना मुकम्मल हो गया, जब उम्रा मुकम्मल हो गया तो नफली इबादत के लिए मैं यहाँ कयाम क्यों करूँ। हुक्म सरकार आशरहुन्न बिलमारूफ कानों में गूंज रही है, तो हाजिरी दरबार नेमत तो है, मगर जब हुक्म सरकार हो जाए कि मेरा दरबार छोड़कर मेरा हुक्म मान लो, तो फौरन मैंने अल्लाह का हुक्म समझकर फौरन आ गया। 23 के को गया और 25 की सुबह आ गया, और एक ही दिन में सब काम हो गया, और मैं ज़ईफ कमजोर, उस दिन अल्लाह ने बला की ताकत दे दी मुझे। ये हुक्म सरकार की बरकत है, ताकत भी हो गई कि 1000 किलोमीटर मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जाना और फिर आना जद्दा एयरपोर्ट पर, बताओ कितना फासला, और जरा सी कमर भी सीधी नहीं की, लेटे भी नहीं, आना जाना बस नमाजों के औकात और खाने के औकात। ये अल्लाह ताला की गैब से मदद है, और ये समझ लो कि मेरी घर में मौलाना की वालदा की करामत भी है इसमें, वो बहुत अल्लाह वाली खातून थी, जिन्होंने शादी की, जिन्होंने निकाह के बाद मुझसे कहा था कि आप अगर जंगल में रहोगे हम जंगल में रहेंगे, आप फाका करोगे हम फाका करेंगे, कभी आपको हम तकलीफ या किसी किस्म की कोई जहनी तौर पर हम आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये समझ के आए हैं कि तुम अपने पीर के पास ज्यादा रहोगे। तो हम 6 दिन रहते थे हजरत के पास, जुमे रात को जाते थे और जुमे की नमाज फिर आके हजरत के पास पढ़ते थे, 18 मील हमारा के ससुराल थी, लेकिन कभी उन्होंने एतराज नहीं किया। एक दफे एक साल रह गए हम यहाँ अपने पीर के साथ, और मेरे बाल बच्चे आजमगढ़ में थे, ऐसे हालात कुछ पेश आ गए मजबूरी के, उन्होंने कोई लड़ाई किसी कसम की नहीं की, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह उनको हयात उनकी दरवाजे बढ़ा दे। अय अल्लाह तेरी कुदरत बहुत बड़ी है, अगर मौत भी आ गई तो भी तो आप बहा सकते हैं, अल्लाह अपनी कजा को बदलने पर कादिर है, अल्लाह हर सुए कजा को हम सब के लिए हुस्न कजा से बदल दे और उनकी सेहत को आफियत के साथ जिंदगी बढ़ा दे। बस आज का मजमून खत्म, अभी हदीस की शरह बाकी रह गई, लेकिन यही एक मजमून, एक मजमून भी दिल में उतर जाए कि अल्लाह को नाराज नहीं करना है, जान दे देना है, मगर नाराज करके हराम खुशियों को अपने अंदर नहीं लाना है, यही इरादा कर लो तो युरीदू ना वजह के आप फर्द हो जाएंगे, सुन्नत सहाबा अदा हो जाएगी। ये सहाबा का ऐलान था, सहाबा के बारे में आयत नाजिल हुई कि युरीदू ना वजह, ये हालन और इस्तकबालन हमारी इरादा, हमको राजी करने का इरादा रखते हैं, तो ये इरादा कर लो। कुव्वत इरादिया में अल्लाह ने ताकत रखा है, अल्लाह ताला ने सहाबा की कुव्वत इरादिया बयान किया इसमें, ये जुमला खबरिया बेमाना नहीं है, बता दिया कि जुमला खबरिया में ये ताकत इरादिया है कि जिससे वो शहीद हो गए भागे नहीं वहां से, इस पर शहीद हो गए भागे नहीं, जंग उहद का दामन से फिरार इख्तियार नहीं किया, शहीद हो गए, जान दे दी उनके नाम पर, जान दे दी मैंने उनके नाम पर, इश्क ने सोचा न कुछ अंजाम पर, इस अंजाम को नहीं सोचता, अपने महबूब को हकीकी और मौला की नजर पर नजर रखता है, इश्क जो होता है कि नहीं हम नहीं देखते, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो अल्लाह हमारे देखने को देख रहा है, कि मैं इस जालिम को देखता हूँ और ये जालिम मेरी नाफरमानी से दूसरी तरफ देखता है, मेरी नजर पे उनकी नजर पासबा रही, अफसोस इस एहसास से क्यों बेखबर थे हम। आप अमल करके तो देखो, दिल में हलावत का दरिया बहेगा, हलावत ईमानी का, दिल खून तमन्ना से आपका कल्ब में अनवार के दरिया बहेंगे, जितना दरियाए खून बहेगा उतने ही दरियाए नूर आएगा, जितना हमारी हराम तमन्नाओं का दरियाए खून पैदा होगा सीने में उतने ही दरियाए नूर पैदा होता है। हर गम के बदले में अल्लाह नूर अता करता है, नफ्स को गम होता है, रूह को उतना ही नूर अता होता है, जितना गम उठाओगे उतने ही नूर पाओगे, जितना लैलाओं से बचोगे उतना ही मौला पाओगे, लेकिन अपनी घर की लैला वो असली है, हलाल है, और उसी को लैला समझो। इस पर भी मेरा फारसी शेर है जो इस साल जनूबी अफ्रीका में हुआ, बहरेमन सौजयमन बहरेमन लैलायमन, हमारी बीवी हमारे लिए ऐ अल्लाह वही लैला है, क्यों कि मरा दादस्त बस मौलायमन, कि मेरे मौला ने उसको दिया है, हलाल की है, अल्लाह भी खुश है। बोलो भाई, तो फिर हर शख्स अपनी बीवियों को लैला समझो, उसको छोड़कर सड़क इधर उधर सड़कों पर नजर न खराब करो। मैं जो हसीनों से बचाने की तकरीर ज्यादा करता हूँ, इसमें बीवियों को शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं तुम्हारे ऊपर उनकी आंखों को महदूद रखना चाहता हूँ कि तुमको छोड़कर गैर औरतों पर नजर न डालें। इसमें बीवियों को घबराना नहीं चाहिए, जितना मुत्तकी होगा मेरा मुरीद मेरे दोस्त उतना ही तुमको ज्यादा प्यार देगा, जब उसकी नजर गैरों से बचेगी तो तुम ले दे के तू ही तो रहेगी, ले दे के बताओ कैसा जुमला है, है? जब शौहर की नजर गैरों से बचेगी तो ले दे के तू ही तो रहेगी, बताओ ये कैसी उर्दू है, है? बस ये अल्लाह ताला का करम है अख्तर पर, कि मेरी उर्दू को भी अल्लाह ताला दिल्ली और लखनऊ से बढ़ा रहा है। इलियास कुरैशी दिल्ली के हैं, जबानदार हैं, पैदाइशी वहीं के हैं, एक शेर मैंने जद्दा में सुनाया उनको या मक्का शरीफ में शायद सुनाया, कि इस दर्जे हलावत है मेरे तर्ज बयां में, इस दर्जे हलावत है मेरे तर्ज बयां में, खुद मेरी जबां अपनी जबां चूस रही है, खुद मेरी जबां अपनी जबान चूस रही है, अगर मिठाई शक्कर ज्यादा डाल दिया जाए तो जबान फिर वो चूसता है ताकि फील्ड खाली हो, रास्ता खाली हो, दूसरी मिठाई खाएं। तो उसने कहा कि इस शेर की कदर मुझ दिल्ली वाले से पूछो, मैं अहले दिल्ली हूँ, जबानदा हूँ, इस शेर की कदर मुझसे पूछो, अगर कोई नवाब होता तो एक रियासत लिखता या कम से कम गांव ही लिखता मेरे नाम। लेकिन इतना बड़ा मजमा है कोई गांव लिखने वाला? पाला पड़ा है फत्तू फकीरों से। मगर शुक्र अदा करता हूँ, आप लोग मुझे नवाबों से ज्यादा प्यारे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत हमें मिल जाए तो सारी दुनिया के नवाबों से बेहतर है। बस दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको साहिब निस्बत औलिया सिद्दीकीन बना दे, यानी औलिया सिद्दीकीन की जो खत आखिर है, अल्लाह अपनी रहमत से जज्ब फरमा कर अख्तर को, मेरी औलाद को और आप सबको, आपकी औलाद को भी और कयामत तक की जरूरियात को अल्लाह हमारे नाफरमान न पैदा फरमा और हम सबको जज्ब करके फैसला कर दे अख्तर को, आप सबको, हमारी जरूरियात, आपकी जरूरियात, ता कयामत बाखुदा रहें और अल्लाह वाले रहें। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर मोहम्मद नबी मंजर मरहूम के लिए सारे सवाब के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा दे। अहमद की मुकम्मल सेहत और हाफिजा तेज होने की दुआ, अल्लाह ताला इनको कुव्वत हाफिजा दे। अल्लाह ताला में अपनी मोहब्बत मुझे दे दे, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी दुआ है। फकीर रानी साहिबा को अल्लाह शिफा अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। सलाहुद्दीन साहब जो कहते हैं कि तुम सलामत रहो, बाकरामत रहो, ताकयामत रहो, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, दिल के मरीज हैं, लेकिन आवाज कड़कदार है, माशाल्लाह।